डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट लिटरेचर, व्याख्यान 31, 1 पीटर 2024, डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं, 1 पीटर पर व्याख्यान 31। क्या यह यहाँ एक पेंटाकेट पंक्ति है? हाँ। क्या हमारे पास कोई प्रश्नोत्तरी है? अगर मैं आपको अभी बताऊं तो यह एक पॉप क्विज नहीं होगा, है ना? क्या आपने कभी उन्हें पॉप क्विज का लेबल दिया है? क्या? क्या आपने कभी वास्तव में उन्हें पॉप क्विज का लेबल दिया है? मुझे लगता है मैंने नहीं किया। क्या मैंने किया? क्या मैं आपको ईस्टर अवकाश के बाद बुधवार को एक प्रश्नोत्तरी दूंगा? आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। ठीक है पिता, आपके बेटे के पुनरुत्थान और हमारे जीवन के लिए व्यक्तिगत रूप से और आपके लोगों के लिए इसके अर्थ और महत्व पर विचार करने के लिए छोटे ब्रेक और आराम और समय के लिए धन्यवाद। पिता, अब जब हम उन दस्तावेजों की ओर मुड़ते हैं जो आपके पुनर्जीवित पुत्र और हमारे भगवान और उद्धारकर्ता की गवाही देते हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें ज्ञान और अंतर्दृष्टि देंगे, हमें धैर्य दें क्योंकि हम उस सामग्री को सुनते हैं जो कुछ मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह हमारे लिए विदेशी है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इसे आंखों के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे और इसे उन लोगों के कानों के माध्यम से सुनेंगे जिन्होंने इसे पहली बार सुना और पढ़ा है, और साथ ही आज आपके लोगों के रूप में हमारे लिए इसके चल रहे महत्व को समझने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, अब कोई प्रश्नोत्तरी नहीं है, इसलिए बस आराम से बैठें, गहरी सांस लें और आराम करें। ठीक है, अगले कुछ हफ्तों में क्या होने वाला है, इसकी बस एक घोषणा। अंतिम परीक्षा से पहले एक और परीक्षा देनी है। अंतिम परीक्षा सभी चार परीक्षाओं की तुलना में व्यापक है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसमें केवल पहली चार परीक्षाओं में मिली सामग्री को शामिल किया गया है, कोई नई सामग्री नहीं होगी। इसलिए यदि कोई ऐसी चीज है जिसका परीक्षण मैंने गॉस्पेल में किया है या ऐसी चीजें जिनका मैंने गॉस्पेल में परीक्षण नहीं किया है, तो वह अंतिम में दिखाई नहीं देगी। फाइनल पहले चार परीक्षाओं की सामग्री पर व्यापक है, तो हम इसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन आपके पास एक और अनुभाग परीक्षा है, संख्या 4, जो रहस्योद्घाटन के माध्यम से इब्रानियों को कवर करती है। यह फाइनल से पहले सप्ताह के सोमवार या बुधवार को किसी समय घटित होगा। मुझे लगता है संभवत यह सोमवार होगा। अब दूसरी बात यह भी है, और यह वास्तव में आपको परेशान और निराश करने वाली है, कि मैं फाइनल से पहले पूरा सप्ताह मिस करने जा रहा हूँ, इसलिए किसी भी दिन को छोड़कर जो शायद सोमवार है, कोई क्लास नहीं होगी। वह 9 तारीख है, 9 मई। सोमवार 9 मई को प्रकाशित वाक्य के माध्यम से इब्रानियों पर अनुभाग 4 की परीक्षा होगी, और मेरे पास एक सहायक होगा जो उस परीक्षा की निगरानी करेगा, आपको परीक्षा देगा और निगरानी करेगा, क्योंकि मैं चला जाऊंगा। मेरा बेटा कोलोराडो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से स्नातक कर रहा है और उसके बाद सप्ताहांत में उसकी शादी है, इसलिए हम पूरे सप्ताह वहीं रहेंगे। इसलिए मुझे बहुत खेद है कि आपको पूरे एक सप्ताह तक न्यू टेस्टामेंट से वंचित रहना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं अंतिम परीक्षा सप्ताह के लिए वापस आऊंगा और फाइनल के लिए हमारे लिए जो भी स्लॉट निर्धारित किया गया है वह तब होगा। इसका मतलब है कि अगले सप्ताह किसी समय, सुने, अगले सप्ताह किसी समय एक और चौथा और अंतिम अतिरिक्त क्रेडिट समीक्षा सत्र होगा, जिसमें परीक्षा संख्या 4 के लिए सामग्री और तैयारी शामिल होगी, जो फिर से सोमवार होगा। ऐसा लगता है कि यह चल रहा है 9 तारीख सोमवार होगी, तो यह एक तरह से सचेत करने जैसा है कि हम किधर जा रहे हैं। तो आज और शुक्रवार, फिर अगले पूरे सप्ताह, और फिर अगले सप्ताह सोमवार को छोड़कर कोई भी कक्षा इब्रानियों और रहस्योद्घाटन पर नंबर 4 की परीक्षा नहीं होगी। लेकिन फिर बुधवार या शुक्रवार को कोई कक्षा नहीं और फिर स्पष्ट रूप से शुक्रवार को कोई कक्षा नहीं, लेकिन फिर अंतिम परीक्षा अगली चीज होगी, उसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना होगी। क्या फाइनल के लिए कोई समीक्षा सत्र होगा? क्या फाइनल के लिए कोई समीक्षा सत्र होगा? संभवतः वहां, हाँ, मैं संभवतः अंतिम परीक्षा के लिए एक अतिरिक्त क्रेडिट समीक्षा सत्र की भी पेशकश कर सकता हूँ। मुझे इस बारे में तार्किक रूप से सोचना होगा कि ऐसा कौन कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अतिरिक्त क्रेडिट समीक्षा सत्र का मूल्य कितना है? मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उनमें शामिल होना आपके समय के लायक होगा। फाइनल के लिए प्रश्नोत्तरी ग्रेड की तरह? एक प्रश्नोत्तरी ग्रेड, हाँ। मुझे याद नहीं है, मुझे बैठकर देखना होगा कि मैंने अतीत में क्या किया था। मुझे याद नहीं है कि प्रतिशत क्या है, लेकिन हाँ, यह अच्छा होगा। ठीक है, हाँ। क्या हमारे पास उन परीक्षणों तक पहुंच है जो हमने लिए हैं? उन परीक्षणों तक पहुंच जो आपने पहले दिए हैं, हाँ, आप उन्हें ले सकते हैं। और फिर आप में से कुछ ने प्रतियां रखी हैं, यह ठीक है। यदि आप परीक्षा की एक प्रति बहुविकल्पीय प्रश्न वाले भाग को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर मैं अगले साल वहां नहीं आऊंगा, इसलिए मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप उनके साथ क्या करेंगे। मुझे संदेह है कि जो व्यक्ति मेरी जगह लेगा वह उनका उपयोग करेगा, तो वास्तव में वे किसी के लिए उपयोगी नहीं होंगे। इसलिए यदि आप चौथी परीक्षा देने के बाद उन्हें चुनना चाहते हैं, यदि आप उन्हें अध्ययन के लिए या उससे पहले किसी भी समय लेना चाहते हैं, तो यह ठीक है। और मेरे जाने से पहले हम फाइनल के बारे में थोड़ी और बात करेंगे, और फिर उम्मीद है कि फाइनल के लिए भी एक समीक्षा सत्र होगा। अच्छा, अगर मैं इसे इसमें फिट कर सकता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जो करना चाहता हूँ वह नए नियम की अंतिम पुस्तक, रहस्योद्घाटन की पुस्तक तक ले जाने वाले छोटे पत्रों के अंतिम खंड पर आगे बढ़ना है। और मैं थोड़ा धीमा करना चाहता हूँ और इन्हें देना चाहता हूँ, जैसा कि हमने जेम्स के साथ किया था। उन्हें थोड़ा और समय दें, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जैसा कि मैंने दो बातें कही हैं। नंबर एक, आमतौर पर सेमेस्टर आने तक अंत में न्यू टेस्टामेंट की अधिकांश कक्षाएं कभी कभी पॉल के पत्रों में बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाती हैं। आप रोमन, गैलाटियन, इफिसियन वगैरह और एक कोरिंथियन जैसी पुस्तकों में फंस जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि क्यों, बहुत अच्छे कारणों से। और दूसरा, फिर से ये किताबें, क्योंकि वे नए नियम के अंत के करीब आती हैं और क्योंकि वे पॉल की शिक्षाओं और पत्रों से इतनी अधिक प्रभावित लगती हैं, उन्हें अक्सर बहुत कम उपचार मिलता है। तो मैं इसे उल्टा करने जा रहा हूं, और शायद फिर से हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है, लेकिन शायद हम इनमें से कुछ पत्रों जैसे जेम्स इब्रानियों, जेम्स एक और दो पीटर के साथ थोड़ा और समय बिता सकते हैं, और विशेष रूप से एक जॉन, दो और तीन जॉन हम बहुत बहुत संक्षेप में देखेंगे, लेकिन उन पर थोड़ा समय व्यतीत करेंगे पुनः, क्योंकि वे प्रकाशित वाक्य और पॉल के पत्रों के बीच में फंसे हुए हैं और उन पर अक्सर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए हम उन्हें आमतौर पर मिलने वाली तुलना में शायद थोड़ा अधिक ध्यान देंगे। इतना कहने के बाद मैं नए नियम के अगले पत्र की ओर बढ़ना चाहता हूँ। तो हम प्रारंभिक चर्च के मेल का एक और टुकड़ा खोलेंगे और एक पत्र निकालेंगे जिस पर हमने एक पीटर का लेबल लगाया है। अब इस पत्र के बारे में दिलचस्प बात यह है कि पहली नजर में यह है कि पत्र का नाम जेम्स के अनुसार रखा गया है। आप लोगों को देखें, पत्र का नाम उस व्यक्ति के अनुसार रखा गया है जिसने इसे लिखा है, उसके अनुसार नहीं। पत्र के प्राप्तकर्ता। हम पॉल के पत्रों के आदि हो चुके हैं। सभी पत्रों का नाम उन व्यक्तियों के अनुसार रखा जाता है जिन्हें वे संबोधित करते हैं। लेकिन जेम्स, पीटर और एक और दो और तीन जॉन का नाम या लेबल उस व्यक्ति के अनुसार रखा जाएगा जिसने वास्तव में पत्र लिखा है। अब एक पत्रस की पुस्तक के बारे में बात करने वाली पहली बात उन परिस्थितियों के बारे में कुछ समझना है जो पत्र को उत्पन्न करती हैं। एक पीटर, जेम्स की तरह लिखा हुआ प्रतीत होता है, दूसरे शब्दों में कम से कम कुछ पत्रों के साथ एक सामान्य पैटर्न प्रतीत होता है, और वह जेम्स जैसे एक प्रमुख ईसाई नेता के लिए है जो एक नेता था जेरूसलम में ईसाई चर्च। जैसे जेम्स या पीटर उन ईसाइयों को एक पत्र लिखते हैं जो व्यापक रूप से फैले हुए हैं या जो एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसलिए यदि पीटर शुरू होता है तो पीटर शुरू करता है यीशु मसीह का एक प्रेरित पोंटस, गैलाटिया, कप्पादोसिया, एशिया और बिथिनिया में फैलाव के निर्वासन के लिए। तो आप वही पैटर्न देखते हैं जो आप जेम्स में देखते हैं। एक पीटर और जेम्स चर्च में एक प्रसिद्ध ईसाई नेता की इस विशिष्ट विशेषता को साझा करते हैं जो अब एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले पाठकों के एक बहुत व्यापक समूह को संबोधित करते हैं। हमने देखा कि जेम्स को यहूदियों को संबोधित किया गया था जो बिखरे हुए थे, और अब एक पीटर को ईसाइयों को संबोधित किया जाता है जो इसी तरह एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। वह उन्हें निर्वासित कहता है। लेकिन जेम्स के विपरीत एक पत्रस यहूदी ईसाइयों को संबोधित नहीं कर रहा है, बल्कि संभवतः गैर यहूदी ईसाइयों को संबोधित कर रहा है। हालांकि हम देखेंगे पत्रस जो काम करता है उनमें से एक यह है कि वह पुराने नियम की भाषा लेता है जो पुराने नियम के इसराइल पर लागू होती है और अब इसे चर्च पर लागू करता है। इसलिए वह अपने पाठकों का वर्णन उन लोगों के रूप में करेगा जो चुने हुए और निर्वाचित हैं, जो कि इसराइल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी। वह उन्हें पवित्र लोगों के रूप में संदर्भित करेगा। वह उन्हें एक पवित्र राष्ट्र और एक शाही पुजारी के रूप में संदर्भित करेगा। इस सभी भाषा को पुराने नियम से बाहर ले जाएगा और अब उस भाषा का उपयोग करेगा जो जातीय रूप से इसराइल राष्ट्र पर लागू होती है, अब इसे इस ट्रांसकल्चरल समूह पर लागू कर रही है जिसे चर्च कहा जाता है, जिसमें दोनों शामिल हैं, यहूदी और अन्य जाति। इसलिए जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं तो यह एक ऐसी चीज है जिसकी आपको आदत डालनी होगी। वह तुम्हें बार बार मिलेगा। इसराइल को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पुराने नियम की भाषा को अब उस चर्च को संदर्भित करने के लिए एक नई सेटिंग में लागू किया जाता है जिसमें अब यहूदी और अन्य जाति दोनों शामिल हैं। अब एक पत्रस की परिस्थितियों के बारे में दो अन्य बातें। सबसे पहले अध्याय 5 श्लोक 9 में लेखक कहता है, विरोध करो, अपने विश्वास में दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि सारे संसार में तुम्हारे भाई बहन एक ही प्रकार के कष्टों से गुजर रहे हैं। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर यह सोचा जाता है कि एक पीटर साथ ही नए नियम की कुछ अन्य पुस्तकें उन ईसाइयों को संबोधित कर रही थीं जो किसी प्रकार के सम्राटव्यापी या आधिकारिक तौर पर स्वीकृत उत्पीड़न से गुजर रहे थे। इसलिए हमारी अक्सर यह धारणा होती है कि वस्तुतः रोमन साम्राज्य के हर शहर में सड़कों पर मार्च करते हुए सैनिकों की टोलियां थीं और वे घर घर जाकर ईसाइयों को सड़कों पर खींच रहे थे और उन्हें मार रहे थे या उनका सिर काट रहे थे या उन्हें मैदान में घसीट रहे थे। जंगली जानवरों या उसके जैसी किसी चीज द्वारा खाया जाना। यह संभवतः पहली सदी में अक्सर सच नहीं था और निश्चित रूप से एक पत्रस के बारे में भी सच नहीं था। एक ऐसा प्रतीत होता है कि पीटर एक ऐसी स्थिति को संबोधित कर रहा है जहां ईसाई मुख्य रूप से उन प्रकार की चीजों से पीड़ित हैं जैसा कि मैंने अभी पढ़ा है। अध्याय 5 श्लोक 9 सुझाव देता है कि आम तौर पर ईसाइयों के लिए आम थे। इसलिए ईसाइयों ने अधिक अनौपचारिक और स्थानीय प्रकार के दबाव और पीड़ा का अनुभव किया होगा, यानी कि अधिकांश पीड़ा जो उन्होंने अनुभव की होगी वह रोमन सरकार की ओर से नहीं थी या रोमन सैनिकों द्वारा सड़कों पर मार्च करते हुए उन्हें बाहर खींचने और पीटने या ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अधिकतर पीड़ाएं स्थानीय स्तर पर रही होंगी और स्थानीय दबाव में उन्हें स्वीकार करना पड़ा होगा और जिस तरह का बहिष्कार, तरह तरह का उपहास और शायद शारीरिक पीड़ा भी ईसाइयों को दी गई होगी, जो कई देशों में रहने वाले ईसाइयों के लिए सच रही होगी। पूरे रोमन साम्राज्य में स्थान। तो फिर एक पीटर की स्थिति शायद कोई आधिकारिक सम्राटव्यापी उत्पीड़न नहीं है, जिसे सम्राट ने रोमन सैनिकों को भेजकर ईसाइयों को सभी प्रकार की समस्याएं पैदा करने के लिए मंजूरी दी थी, बल्कि फिर से उसी तरह का उत्पीड़न और बहिष्कार और उपहास है जो उस समय हुआ होगा। स्थानीय स्तर पर और अधिक छिटपुट रूप से पूरे रोमन साम्राज्य में फैल गया। इसके अलावा पत्र की परिस्थितियों का एक और सुराग हमें अध्याय 5 के श्लोक 13 में मिलता है। पीटर ने पत्र को यह कहते हुए समाप्त किया, बेबीलोन में आपकी बहन चर्च ने आपके साथ मिलकर आपको शुभकामनाएं भेजी हैं और मेरा बेटा मार्क भी ऐसा ही करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तक बेबीलोन रोम शहर के लिए एक कोड शब्द बन गया था। तो जाहिर तौर पर पत्रस यह पत्र रोम से लिख रहा है, जिसे वह बेबीलोन कहता है। बाद में उम्मीद है हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के एक खंड को देखेंगे जो स्पष्ट रूप से पुराने नियम के शब्द का उपयोग करते हुए रोम शहर को बेबीलोन के रूप में पहचानता है। अब यह शब्द पहली सदी के रोम शहर पर लागू हो गया है और ऐसा लगता है कि पीटर ने भी इसे अपना लिया है। तो यह सब एक साथ रखने पर पीटर यीशु के प्रेरितों में से एक प्रतीत होता है जो अब रोम में रह रहा है और ईसाइयों को एक पत्र लिख रहा है जो बस उसी तरह के बहिष्कार और उपहास और पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं जो ईसाइयों ने नियमित रूप से अनुभव किया होगा। लेकिन उस समय के रोमन साम्राज्य के बड़े हिस्से में छिटपुट रूप से। यह भी देखें कि वे कितने व्यापक रूप से फैले हुए हैं। अध्याय 1 और श्लोक 1 में हमने पोंटस, गैलाटिया, कप्पाडोसिया, एशिया और बिथिनिया में फैलाव के निर्वासितों को पढ़ा। वे 5 नाम रोम के सभी प्रांत थे। कक्षाओं के पहले सप्ताह को याद करें, बेशक आपको बहुत पुरानी बात याद है, लेकिन हमने रोमन साम्राज्य और रोमन सरकार के बारे में थोड़ी बात की थी और उन्होंने अपने बड़े साम्राज्य को प्रबंधित करने का एक तरीका इसे प्रांतों और इन 5 में विभाजित करना था। उनमें से एक का नाम आप पहले से ही परिचित हैं, गैलाटिया। हमने सुझाव दिया कि गलाटियंस की पुस्तक संभवतः रोमन प्रांत गलाटिया के दक्षिणी भाग में चर्चों के एक समूह के लिए लिखी गई थी। इसलिए ये ईसाई अलग अलग समय पर गैलाटिया के पूरे रोमन प्रांत में फैल गए और स्थानीय गैर आधिकारिक स्तर पर छिटपुट रूप से पीड़ित हुए, अपने बुतपरस्त पड़ोसियों के हाथों विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न और उपहास और सामाजिक और शारीरिक बहिष्कार का सामना किया। और इसलिए अब इसे एक साथ रखने के लिए पीटर लिखते हैं। मूल रूप से पीटर का एक पत्र लिखना उन्हें शत्रुतापूर्ण वातावरण में अपने विश्वास को जीने में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है, चाहे वह किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, चाहे वह कितनी भी अनौपचारिक हो और कितनी भी विविध और फैली हुई हो, बल्कि उन्हें इस तरह के माहौल के बीच इस संदर्भ में यीशु मसीह में अपनी दृढ़ता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। एक अर्थ में पत्र का उद्देश्य, पत्र के उद्देश्य को उस विषय पर ध्यान देकर संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है जो पूरे पीटर में उसके स्थान के अनुपातहीन मात्रा में घटित होता है। उदाहरण के लिए, पीड़ित होने के लिए क्रिया रूप, पीटर द्वारा पीड़ा के लिए उपयोग किया जाने वाला क्रिया रूप, इसकी 41 घटनाओं में से 12 क्रिया रूप पूरे नए नियम में क्रिया के रूप में 41 बार आता है। उनमें से 12 उदाहरण एक पीटर में होते हैं। और फिर यह महत्वपूर्ण है, एक पीटर जैसी छोटी और छोटी पुस्तक की तुलना संपूर्ण नए नियम से की जाती है, यह घटनाओं की एक बड़ी संख्या है। इसके अलावा उसी शब्द का संज्ञा रूप पीड़ा के लिए वही मूल शब्द जो पीटर उपयोग करता है, संज्ञा रूप एक चौथाई बार घटित होता है, एक चौथाई बार घटित होता है जो नए नियम में घटित होता है, उन घटित होने वाली घटनाओं का एक चौथाई वह 16 में से 4 है, एक पीटर में होता है। तो पीड़ा से संबंधित इस शब्द के उपयोग का यह समूह पीटर के उद्देश्य के बारे में कुछ सुझाव देता है और वह अपने मुख्य विषय में क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिर यानी मुझे लगता है जिन चीजों को वह संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से एक है ईसाइयों को प्रोत्साहित करना और उन्हें निर्देश देना कि वे विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं का सामना कैसे करें जो वे झेल रहे हैं, खासकर बुतपरस्त समाज के हाथों। हालांकि फिर भी यह अभी तक किसी आधिकारिक सम्राटव्यापी उत्पीड़न के बिंदु तक गर्म नहीं हुआ है जहां ईसाइयों को मैदान में घसीटा जा रहा है और इस तरह की चीजें, यह अभी तक उस बिंदु तक नहीं पहुंचा है। लेकिन फिर भी इन घटनाओं की घटनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। जाहिरा तौर पर पीटर ईसाइयों को यह निर्देश देने के लिए लिखने की आवश्यकता को देखता है कि इससे कैसे निपटना है। अब इसके कारण पीटर को आसानी से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही पीड़ा के इस विषय से संबंधित हैं। पहले अध्याय में, पहले 3 अध्यायों में पीटर वास्तव में अपने पाठक को बुलाता है। यह रोचक है। वह तुरंत उनसे केवल पीड़ा सहने और उससे उबरने में सक्षम होने का आह्वान नहीं करता है, बल्कि इसके बजाय यह दिलचस्प है कि न केवल पहले 3 अध्यायों में बल्कि पूरी किताब में पीटर के निर्देश का एक हिस्सा बुना गया है। जिस तरह से उन्हें पीड़ा से निपटना है वह उस पीड़ा के बीच उचित ईसाई आचरण बनाए रखना है और वह मुख्य रूप से यह है कि वे पवित्र जीवन जिएंगे। यहीं पर आपको पुराने नियम का उद्धरण मिलता है, पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। यह वह जगह है जहाँ हम एक क्षण में इस पाठ को देखेंगे, लेकिन अध्याय 2 में पीटर जो काम करता है उनमें से एक यह वह जगह है जहाँ आप पीटर को चर्च को एक पवित्र मंदिर के रूप में वर्णित करते हुए पाते हैं। पीटर जो कर रहा है वह उन्हें बता रहा है कि जिस तरह से उन्हें इस शत्रुता का जवाब देना चाहिए वह पवित्रता के माध्यम से है, लेकिन वे एक समुदाय बनाकर ऐसा करते हैं। पीटर उनसे स्वयं ऐसा करने का आह्वान नहीं करता है, बल्कि इसके बजाय वह उनसे एक समुदाय, एक पवित्र मंदिर बनाने का आह्वान करता है और हम बस एक क्षण में उस विषय को देखेंगे। इसलिए जिस तरह से उन्हें इस उचित आचरण को बनाए रखना है और एकमात्र तरीका जिससे वे अंततः इस दबाव और पीड़ा के आगे झुकने के प्रयास का विरोध करने में सक्षम होंगे वह एक पवित्र समुदाय, एक मंदिर का गठन और निर्माण करना है जिसे पीटर कहते हैं गिरजाघर। लेकिन दूसरा अध्याय 4 और 5 में यह वह जगह है जहां पीटर अपने पाठकों को दृढ़ रहने के लिए बुलाकर अधिक विस्तार से बताता है और मुख्य चीजों में से एक जो वह करता है वह यह है कि वह मसीह को ऐसे व्यक्ति के उदाहरण के रूप में उपयोग करता है जिसने प्रतिशोध नहीं लिया। इसलिए वह उन्हें प्रतिशोध न लेकर अपनी ईसाई गवाही को बनाए रखते हुए दृढ़ रहने के लिए कहता है और यहीं पर पतरस बार बार यीशु के उदाहरण का उपयोग ऐसे व्यक्ति के रूप में करता है जिसने प्रतिशोध नहीं लिया। वह यशायाह अध्याय 53 के उदाहरण का उपयोग करता है, पीड़ित सेवक जिसे हम अक्सर ईस्टर पर उद्धृत करते हैं। पीटर इसका संकेत यह प्रदर्शित करने के लिए करता है कि उसके पाठकों को मसीह की तरह प्रतिशोध लेने और बदला लेने से बचना चाहिए, भले ही वे इस स्थानीय छिटपुट उत्पीड़न और दबाव और बहिष्कार के हाथों अन्यायपूर्ण रूप से पीड़ित हो सकते हैं जिसका वे सामना कर रहे हैं और उपहास कर रहे हैं। तो पीटर को इस प्रकार स्थापित किया गया है। इसे कुछ मायनों में इन दो वर्गों के बीच विभाजित किया जा सकता है। लेकिन इब्रानियों की किताब की तरह पतरस अपनी व्याख्या मसीह के बारे में वह क्या कहता है और चर्च के बारे में वह क्या कहता है और उन्हें कैसे प्रतिक्रिया देनी है इसके उपदेश के बीच बारी बारी से आगे पीछे करता है। हमने देखा कि इब्रानियों ने ऐसा किया। यह प्रदर्शनी संकेत और फिर चेतावनी अनुभागों या अनिवार्यता या आदेशों के बीच आगे पीछे होता रहता है। पीटर भी कुछ ऐसा ही करता है। वह अपनी व्याख्या और फिर उपदेश के बीच आगे पीछे होता रहता है, लेकिन मोटे तौर पर उसे इन दो खंडों में विभाजित किया जा सकता है। लेकिन फिर से यह देखना दिलचस्प है कि जब पीटर ईसाइयों को कष्ट झेलने के लिए संबोधित करते हैं, तो उनके निर्देश का मूल केवल एक प्रकार की प्रतिवर्ती कार्रवाई या निष्क्रिय कार्रवाई या लंबी अवधि के लिए खुदाई और तैयारी नहीं है। पीटर के सभी निर्देश एक उपयुक्त ईसाई गवाह और संदर्भ बनाए रखने, उचित ईसाई आचरण, पवित्रता बनाए रखने, एक समुदाय बनाने और प्रतिशोध से इनकार करने के बारे में हैं। इसलिए मुझे पीड़ा के संबंध में पीटर के निर्देश काफी दिलचस्प लगते हैं। वह उन्हें केवल दृढ़ रहने और सहन करने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि यह अधिक सक्रिय है। उन्हें अपनी गवाही बनाए रखनी है और उचित ईसाई आचरण बनाए रखना है और प्रतिशोध नहीं लेना है, और जिस स्थिति का वे सामना कर रहे हैं उसके बीच भी पवित्रता का प्रयास करना है। अब एक पत्रस की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वह है जो वह चर्च के बारे में कहता है। इसका सबसे लंबा वर्णन हमें एक पत्रस अध्याय 2 में मिलता है, जहां वह कहता है, तू उसके पास आ, एक जीवित पत्थर, यद्यपि मनुष्यों ने उसे अस्वीकार कर दिया है, फिर भी परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और बहुमूल्य है। और जीवित पत्थरों की तरह अपने आप को एक आध्यात्मिक घर बनाने दें, पवित्र पुरोहित बनने के लिए, आध्यात्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए, यीशु मसीह के माध्यम से भगवान को स्वीकार्य होने दें। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, देखो मैं सियोन में एक चौथाई पत्थर चुना हुआ और बहुमूल्य रखता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे लज्जित न होना पड़ेगा। उनके लिए जो विश्वास करते हैं, आप में से उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं कि वह अनमोल है, या इसका बेहतर अनुवाद किया जाना चाहिए, सम्मान है। तुम में से जो विश्वास करते हैं उनके लिए सम्मान है, परंतु जो विश्वास नहीं करते उनके लिए वह पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, कोने का पत्थर बन गया है। फिर श्लोक 9, परंतु इसके बजाय आप एक चुनी हुई जाति, एक शाही पुरोहित, एक पवित्र राष्ट्र, भगवान के अपने लोग हैं, ताकि आप उसके शक्तिशाली कार्यों का प्रचार कर सकें जिसने आपको अंधेरे से बाहर और अपनी रोशनी में बुलाया है। अब मैं जिस चीज की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह चर्च की न केवल एक इमारत बल्कि एक मंदिर से तुलना करके पीटर द्वारा पुराने नियम की भाषा का उपयोग करना है। प्रारंभिक ईसाई धर्म में यह बहुत आम था। वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि यह एक अन्य यहूदी आंदोलन कुमरान समुदाय में बहुत आम था। याद रखें, हमने एसेंस के बारे में बात की थी जिनका नारा हो सकता था, चलो पीछे हटें। एसेंस रेगिस्तान में चले गए और अपना समुदाय बनाया, कुमरान समुदाय ने अपना समुदाय बनाया। और इसका एक हिस्सा यह था कि उन्होंने खुद को समझा क्योंकि वे इससे परेशान थे, और उन्होंने यरूशलेम में भौतिक मंदिर को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने अपने समुदाय को एक अर्थ में अंतरिम अवधि में एक आध्यात्मिक मंदिर बनने के लिए समझा, जब तक कि भगवान नहीं आएंगे और भौतिक मंदिर का पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण नहीं करेंगे। तो यह दिलचस्प है। कुमरान साहित्य में आप उनके बारे में इस भाषा में पढ़ते हैं, लाक्षणिक रूप से समुदाय के सदस्यों की तुलना पत्थरों से करते हैं और समुदाय की तुलना एक मंदिर और एक घर, एक इमारत से करते हैं। पीटर और आरंभिक ईसाई भी यही काम करते हैं। हमने पॉल के पत्रों में देखा कि वह अक्सर चर्च की तुलना एक मंदिर से करता था और सदस्यों की तुलना उन पत्थरों से करता था जिनसे मंदिर बना है, और अब पीटर भी वही काम करता है। और इसमें जो हो रहा है वह पुराने नियम के मंदिर में है, पुराने नियम का मंदिर अपने लोगों के साथ भगवान की उपस्थिति का प्रतीक था। पुराने नियम का मंदिर ईश्वर के निवास और उसकी वाचा के लोगों इज़राइल के साथ उसकी उपस्थिति का प्रतीक है। जब मंदिर को नष्ट कर दिया गया क्योंकि इज़राइल ने पाप किया था और भगवान उन्हें निर्वासन में भेजने के लिए अश्शूर और बेबीलोन लाए थे, तो मंदिर को नष्ट कर दिया गया था और यशाया, ईजेकी इत्यादि जैसे भविष्यवक्ताओं ने एक दिन की आशा की थी जब भगवान एक दिन पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापित करेंगे मंदिर को उस स्थान के रूप में जहाँ वह अपने लोगों के बीच निवास करेगा। दिलचस्प बात यह है कि नया नियम तब मंदिर को देखता है और एक पुनर्निर्माण मंदिर के वादे और भविष्यवाणियां अंततः यीशु और उनके चर्च उनके अनुयायियों में पूरी होती हैं। तो यही कारण है कि आपके पास पीटर और पॉल और अन्य लोग हैं जो पुराने नियम से भौतिक मंदिर की कल्पना ले रहे हैं और अब इसे स्वयं लोगों चर्च पर लागू कर रहे हैं। अब चर्च ही ईश्वर का सच्चा मंदिर है। अब चर्च वह स्थान है जहां भगवान अब अपने लोगों के साथ रहते हैं, अब भौतिक संरचना के माध्यम से नहीं, भौतिक इमारत के माध्यम से नहीं। इसीलिए एक साइड नोट के रूप में यही कारण है कि व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि यरूशलेम में कभी भी भौतिक मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा, या यदि ऐसा है तो इसका भविष्यवाणी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नए नियम में स्पष्ट है कि पुनर्निर्मित मंदिर अब है। जिस पुनर्निर्मित मंदिर की भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी वह अब यीशु और चर्च में पूरी होती है, किसी अन्य भौतिक रूप से पुनर्निर्मित मंदिर में नहीं। तो मंदिर का पुनर्निर्माण पहले ही हो चुका है, यह पहले ही स्थापित हो चुका है, या इससे भी बेहतर, यह मसीह और उस चर्च के माध्यम से फिर से बनाया और स्थापित किया जा रहा है जिसे वह अब बना रहा है। इसलिए पत्रस ईसाइयों के बारे में बात करता है कि वे जीवित पत्थर हैं जो इस आध्यात्मिक निवास, इस स्थान जहां भगवान रहते हैं, को बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो भगवान की उपस्थिति का असली ठिकाना अब पुराने नियम के भौतिक मंदिर में नहीं है, नहीं किसी अन्य भौतिक इमारत में, बल्कि अब स्वयं भगवान के लोग हैं। इसलिए पीटर चर्च को जीवित पत्थरों से बनी इस इमारत भगवान का मंदिर कह सकते हैं। इसका उद्देश्य या इसका कार्य दोहरा है। नंबर एक, पाठकों को यह याद दिलाना है कि वे एक पवित्र मंदिर हैं। यह उन्हें उस तरह का जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा जैसा पीटर उनसे चाहता है। याद रखें, पत्रस की रणनीति का हिस्सा सिर्फ उन्हें पीड़ा झेलने के लिए प्रेरित करना नहीं है, बल्कि पवित्रता बनाए रखना और उचित ईसाई आचरण में उनकी गवाही को बनाए रखना है। इसका एक हिस्सा उन्हें याद दिला रहा है कि वे वास्तव में पुराने नियम की पूर्ति में इस मंदिर का निर्माण करते हैं। यदि वे यह शुद्ध मंदिर हैं जहां भगवान निवास करते हैं, तो उन्हें यह प्रदर्शित करना होगा कि वे कैसे रहते हैं, विशेष रूप से शत्रुता और शत्रुतापूर्ण वातावरण के बीच जिसमें वे खुद को पाते हैं। लेकिन दूसरा, मुझे लगता है कि एक और मुद्दा भी हो सकता है, और वह उन लोगों के लिए है जो अव्यवस्था से पीड़ित हैं, जो निर्वासित हैं। उन्हें निर्वासित के रूप में वर्णित किया गया है और अव्यवस्था और उत्पीड़न और उपहास का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें यह मंदिर कहना है और इन सभी सदस्यों से मिलकर बना यह घर सामाजिक रूप से उनकी पहचान स्थापित करने का एक तरीका होगा। तो दूसरे शब्दों में, अगर उन्हें कहीं जाने की जरूरत है, अगर उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, अगर दुनिया एक प्रतिकूल जगह है, तो उन्हें अपनेपन की भावना रखने की जरूरत है। उन्हें कुछ न कुछ अपना होना चाहिए, और इसलिए पीटर कहते हैं, आप ऐसा करते हैं। आप इस पवित्र मंदिर का हिस्सा हैं जो लगातार बनाया जा रहा है, और प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य एक इमारत का पत्थर है। इस प्रकार यह पीड़ा के बीच पवित्रता और पवित्रता के लिए प्रेरणा है, लेकिन साथ ही उन लोगों के लिए अपनेपन और पहचान की भावना भी है जो खुद को चारों ओर बिखरे हुए पाते हैं और खुद को एक शत्रुतापूर्ण दुनिया और एक शत्रुतापूर्ण वातावरण में पाते हैं। अब संभवतः पूरे नए नियम में सबसे अधिक परेशान करने वाले अनुच्छेदों में से एक एक पत्रस में पाया जाता है, और यह अध्याय 3 में पाया जाता है और श्लोक 18 से शुरू होता है। और मुझे इसे आपको पढ़ने दीजिए। क्योंकि मसीह ने भी पाप के लिए कष्ट सहा था, इसलिए यह असामान्य नहीं है। यही पत्रस का मुख्य विषय है। क्या वह यह प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे मसीह ने भी कष्ट सहा, लेकिन प्रतिशोध के बिना उसके अनुयायियों को भी ऐसा ही करना चाहिए? वह कहता है कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी, पापों के लिए एक ही बार दुहक उठाया कि तुम्हें परमेश्वर के पास पहुंचाए। उसे शारीरिक रूप से मार डाला गया, परंतु आत्मा में जीवित किया गया, और उसमें भी वह गया और जेल में बंद आत्माओं को उपदेश दिया। और यह दिलचस्प है, पूर्व समय में किसने आज्ञा का पालन नहीं किया, जब नूह के दिनों में जहाज के निर्माण के दौरान भगवान ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, जिसमें कुछ अर्थात 8 व्यक्ति पानी के माध्यम से बचाए गए थे। अब यीशु के जेल में आत्माओं के पास जाने और उन्हें उपदेश देने की यह कहानी वास्तव में क्या है? और फिर यह कहता है, ये आत्माएं वे ही थीं जो उस समय मौजूद थीं जब नूह ने जहाज बनाया था। पत्रस को मसीह के जेल में इन आत्माओं के पास जाने की यह कहानी कहां से मिली? जेल में बंद ये आत्माएं कौन हैं जिन्हें यीशु उपदेश देते हैं? वह उन्हें क्या उपदेश देता है? वे जेल में कहां हैं? यीशु वहां कब गए और ऐसा कब किया? और इसका नूह और उत्पत्ति 6, नूह और जहाज की कहानी से क्या लेना देना है? पीटर दुनिया में क्या कर रहा है? मेरी राय में यह संभवतः पूरे नए नियम में सबसे अधिक परेशान करने वाले अनुच्छेदों में से एक है, जहां तक यह समझने की कोशिश की जा रही है कि यह किस बारे में है और हम इसे कैसे समझते हैं। अब इसका एक हिस्सा प्रेरितों के पंथ के उस हिस्से से जुड़ा है या शायद प्रभावित कर सकता है, जिसका हम अक्सर हवाला देते हैं। तो आइए इसे एक साथ उद्धृत करें। ये तो बस इसका एक हिस्सा है। मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, मृत किया गया और दफनाया गया। मृतकों में से जीवित होने के तीसरे दिन वह नरक में चला गया। और यह स्पष्टतः पंथ का केवल एक भाग है। लेकिन जिस वाक्यांश पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वह है, वह नरक में उतर गया। अब मसीह के ये अन्य 3 विवरण नए नियम में स्पष्ट रूप से प्रमाणित हैं कि मसीह मर गए और उन्हें दफनाया गया, और जाहिर है कि वह तीसरे दिन मृतकों में से उठे। आप उन सभी को 1 कुरिन्थियों 15 में एक खंड में एक साथ पाते हैं। लेकिन मसीह के नरक में उतरने का यह संदर्भ उन स्थानों में से एक है जो हमें स्पष्ट रूप से मिलता है, जो 1 पत्रस 3:18-20 से है। ईसा मसीह के जेल में आत्माओं के पास जाने और उन्हें उपदेश देने का यह संदर्भ प्रेरितों के पंथ में इस कथन को शामिल करने के औचित्य में से एक प्रतीत होता है। और इसी तरह प्रेरितों के पंथ को जानते हुए हम अक्सर 1 पत्रस 3 पर वापस जाते हैं और इसे मसीह के जेल में आत्माओं के पास जाने, नरक में जाने के वर्णन के रूप में पढ़ते हैं, अर्थात उस समय के बीच जब यीशु क्रूस पर मरे और कहा यह समाप्त हो गया, उस समय और जब वह फिर से जी उठे, उस समय के बीच यीशु नरक में गए होंगे और कुछ उपदेश दिया होगा, शायद मोक्ष का दूसरा मौका कुछ। क्या यीशु जेल में आत्माओं को एक और मौका दे रहा है? अब जब वह अंतः मानवता के पापों के लिए मर गया, तो क्या वह अब कह रहा है, मैंने यह किया है और यहां एक और मौका है? या क्या हमें इसे किसी और तरीके से समझने की जरूरत है? समस्या का एक हिस्सा यह है कि यह केवल 2 या 3 छंदों तक ही सीमित है। भाषा एक अर्थ में बहुत अस्पष्ट है, लेकिन आम तौर पर हमने इन छंदों को इसी तरह समझा है। और फिर एक पत्रस तीन संभवतः प्रेरितों के विश्वास कथन के इस इटैलिकाइज्ड खंड के पीछे निहित है कि यीशु नरक में उतरे थे। अब नए नियम में कुछ अन्य स्थान भी हैं जिनका उपयोग इसका समर्थन करने के लिए किया गया है, लेकिन यह संभावनाओं में से एक है। क्या आपका हाथ ऊपर था? क्या यह विचार नहीं है कि उन्होंने नरक और स्वर्ग के निर्णय को बीच में रखा? जरूर हाँ। और आपको यह अधोलोक प्रतीक्षा स्थल मिल गया है जहां लोगों को उस क्षण तक जब तक कि यीशु सभी के पापों के लिए क्रूस पर नहीं मरे कोई मुक्ति नहीं मिली। बस उस दिन का इंतजार था। पाताल लोक का उल्लेख मिलता है। मुझे लगता है कि यह पुराने नियम में हो सकता है। यह कुछ नया है जहां यह संदर्भित करता है कि कैसे अब्राहम और इसहाक सभी जीवित हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह से वे इसे उस भाषा में संदर्भित करते हैं कि वे इस समय स्वर्ग में हैं, और यीशु मसीह को वास्तव में उन्हें इस प्रतीक्षा से बाहर निकालना है, स्वर्ग में स्थापित करो। और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उनके उद्धार और उन पर विश्वास करने वालों के सुसमाचार का प्रचार करने के द्वारा इसका संदर्भ दिया गया है। क्या हम कहेंगे? जरूर हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। किसी का सुझाव है कि नरक न्याय का अंतिम स्थान इससे पहले है कि लोग बीच में एक प्रकार के टैंक में हैं और ईसा मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अब ऐसा हो गया है। अब ईसा उन व्यक्तियों के पास जाकर उपदेश दे सकते हैं और वे या तो उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं या उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। इसे दूसरे तरीके से समझा गया है ना? इसे अक्सर समझने का एक और तरीका यह है कि किसी ने सुझाव दिया कि यीशु की मसीह वास्तव में नूह के माध्यम से उपदेश दे रहे थे, कि जब नूह ने अपने आसपास के लोगों को उपदेश दिया कि अब वे आत्माएं हैं, वे मर चुके हैं और वे आत्माएं हैं, लेकिन जब वे जीवित थे तो किसी ने सुझाव दिया कि पत्रस जो कह रहा है वह वास्तव में नूह के माध्यम से इन लोगों को उपदेश दे रहा था जो अब आत्माएं हैं, और इसलिए यह मोक्ष का दूसरा मौका नहीं दे रहा है, बल्कि यह केवल ऐतिहासिक रूप से यह दर्ज कर रहा है कि जब नूह जहाज का निर्माण कर रहा था और उसका मजाक उड़ाया जा रहा था तो मसीह वास्तव में उसके माध्यम से इन व्यक्तियों को उपदेश दे रहा था या बोल रहा था जो अब मर चुके हैं और हैं वास्तव में आत्माएं। एक और संभावना है। मैं इस पाठ के बारे में आपके पाठ्यक्रम में उल्लिखित प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछकर कुछ बहुत अलग सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे पहले, यह कब हुआ? ईसा मसीह ने ऐसा कब किया? ध्यान दे, पद 18 कहता है, क्योंकि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी को पापों के लिए एक ही बार दुहक उठाया कि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाएं। उसे शारीरिक रूप से मार डाला गया लेकिन आत्मा में जीवित कर दिया गया, जो यीशु के पुनरुत्थान का संदर्भ है। फिर श्लोक 19 कहता है, किसमें? मुझे लगता है जो उसके पुनरुत्थान को संदर्भित करता है। तो आप कह सकते हैं यीशु को शारीरिक रूप से मार डाला गया था लेकिन आत्मा में जीवित किया गया था। वहीं उनका पालन पोषण हुआ। जिस समय या जिस अवस्था में उसका पालन पोषण हुआ उस समय वह कारागार में आत्माओं के पास गया। इसलिए मैं यह मानता हूं कि इस पाठ में जो कुछ भी चल रहा है वह यीशु के पुनरुत्थान के समय हुआ था। जब यीशु पुनर्जीवित हुए उनके पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप जिस समय वह मृतकों में से जीवित हुए तभी उन्होंने यह घोषणा की। तो मेरी राय में यह गुड फ्राइडे पर उनकी मृत्यु और रविवार को उनके पुनरुत्थान के बीच किसी समय यीशु का उल्लेख नहीं करता है। उसके बीच में किसी समय यीशु इन आत्माओं के पास गए। मैं आश्वस्त नहीं हूं कि यह इसी बारे में बात कर रहा है। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो उसके पुनरुत्थान पर घटित होता है। और फिर मुझे लगता है कि यदि आप अंग्रेजी अनुवाद पढ़ेंगे तो वे श्लोक 18 और 19 के साथ अलग अलग चीजें करेंगे। लेकिन जो मैंने अभी पढ़ा वह मुझे पसंद है। इसमें कहा गया है, उसे शरीर के द्वारा मार डाला गया, परंतु आत्मा में जीवित किया गया। यही उसका पुनरुत्थान है, जिसमें वह आत्मा में जीवित किए जाने की बात कर रहा है, जिसमें वह किस अवस्था में है, किस अवस्था में है। समय जब वह पुनर्जीवित हुआ, तभी वह गया और जेल में आत्माओं को यह उद्घोषणा की। इसलिए मुझे लगता है कि इससे हमारी समस्या का कम से कम एक हिस्सा हल हो गया है। यह जो कुछ भी है, मसीह जहां भी जाता है, जो कुछ भी उपदेश देता है, जो भी ये आत्माएं हैं, मसीह ऐसा करता है। मूसा के समय नहीं, मूसा के समय नहीं, नूह के समय नहीं, तब नहीं जब नूह जीवित था। वह नूह के माध्यम से उपदेश नहीं दे रहा है। वह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच किसी समय उपदेश नहीं दे रहा है। वह जो कुछ भी कर रहा है, वह मृतकों में से जीवित होने के बात कर रहा है। खैर, यह सकारात्मक नहीं है। हाँ, यह एक अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि वह शायद कोलोराडो में पहाड़ों का आनंद ले रहा था। नहीं, वह था। हाँ, मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि मैं उसमें जाना चाहता हूँ या नहीं। आप में से किसी को भी मसीह की मृत्यु और मसीह के पुनरुत्थान के बीच जो कुछ हुआ उससे निपटना होगा। मैं मानता हूँ कि वह पिता की उपस्थिति में था और स्वर्ग में चढ़ गया था, लेकिन फिर भी उसके शरीर का भौतिक पुनरुत्थान अभी तक नहीं हुआ था। नई सृष्टि के उद्घाटन के संकेत के रूप में उसका शारीरिक पुनरुत्थान अभी तक नहीं हुआ था। तो मैं यह मानता हूँ कि वह स्वर्ग में पिता की उपस्थिति में था, और मुझे लगता है कि पूरे नए नियम में इसके अच्छे सबूत हैं। हाँ, लेकिन हाँ, मुझे लगता है, फिर से मुझे लगता है कि उस भाषा में से कुछ पुराने नियम प्रकार की भाषा है और स्पष्ट रूप से पुनरुत्थान को संदर्भित करती है। लेकिन यह बहुत अच्छा सवाल है। तो मसीह कहाँ गए? तो यदि उसने बड़े होने पर ऐसा किया, तो मसीह कहाँ गया? फिर पाठ वास्तव में हमें नहीं बताता है। यह हमें नहीं बताता कि ईसा मसीह कहीं नीचे गए थे, हालांकि ऐसा हो सकता है। यह हमें नहीं बताता कि वह ऊपर गया। यह हमें नहीं बताता कि ये आत्माएं जेल में कहां थीं। पाठ बस कुछ नहीं कहता। लेकिन फिर शायद हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या यह आवश्यक रूप से एक विशिष्ट स्थान है? क्या पीटर नीचे या ऊपर किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान के बारे में सोच रहा है? एक दिलचस्प बात, यदि आप इफिसियों में वापस जाते हैं, यदि आप इफिसियों की किताब में वापस जाते हैं, तो सबसे अधिक संभावना है कि हमने क्या कहा। मैं थोड़ा आगे कूद रहा हूं, परंतु इफिसियों में आत्माएं, शासक और अधिकारी कहां पाए गए, जिन्हें हमने बुरी शक्तियां और बुरी आत्माएं कहा था? वे इफिसियों में कहां पाए गए थे? पृथ्वी के राज्यों के पीछे पॉल उन्हें स्वर्ग में भी स्थित करता है। तो हमें यीशु को इन आत्माओं की घोषणा करने या उनका सामना करने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? चाहे वे कोई भी हों और वह स्वर्ग में जो कुछ भी करते हैं उसका प्रचार करते हैं, जरूरी नहीं कि नरक में या किसी अन्य डिब्बे में कहीं। हालांकि यह एक संभावना है, लेकिन शायद यह समान है पौलुस इफिसियों में क्या कह रहा है। ये आत्माएं स्वर्गीय लोकों में हैं, जो स्वर्गीय लोकों को नियंत्रित करती हैं। और वहां भी हमने देखा कि यीशु स्वर्ग के हर शासक और अधिकारी से बहुत ऊपर बैठा था। लेकिन इसके अलावा फिर से पाठ हमें कुछ नहीं बताता है। यह विशेष रूप से यह नहीं बताता है कि यीशु कहीं नीचे गया था या रास्ते में था, या यह नहीं बताता है कि वह कहां गया था। दूसरा, वे कौन थे? ये आत्माएं कौन थीं? मेरी राय में मुझे लगता है कि पीटर उस परंपरा पर भरोसा कर रहे हैं जो उन्हें इसकी व्याख्या करने के लिए प्रेरित करती है। अब आपको फिर से अपने पुराने टेस्टामेंट में वापस जाना होगा। यदि आपको उत्पत्ति अध्याय 6 याद है, तो बाढ़ की शुरुआत का एक हिस्सा भगवान के पुत्रों के आने और पुरुषों की बेटियों के साथ संबंध बनाने की कहानी थी। दिलचस्प बात यह है कि यहूदी साहित्य में ईश्वर के उन पुत्रों को लगभग सर्वसम्मति से आध्यात्मिक या देवदूत प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्हें बाद में जेल में डाल दिया जाता है और फैसले का इंतजार किया जाता है। मैं थोड़ी देर में उस पर वापस आऊंगा, लेकिन उस पर बने रहिए। जेल में बंद आत्माएं उत्पत्ति अध्याय 6 के फैसले का इंतजार कर रही थीं। मैं बस एक क्षण में उस पर वापस आने वाला हूं। अंततः यीशु ने क्या उपदेश दिया? सबसे अधिक संभावना है यीशु। फिर वहां जिस शब्द का अनुवाद आपके अधिकांश अंग्रेजी अनुवादों में किया गया है, उसका मतलब यह नहीं है कि उसने सुसमाचार का प्रचार किया था, हालांकि इसमें यह शामिल हो सकता है। लेकिन यह केवल कुछ संदेश घोषित करने के लिए एक बहुत ही सामान्य शब्द है। तो यह मुक्ति का संदेश हो सकता है, या यह न्याय का संदेश भी हो सकता है कि यीशु गरीब है, या यह बस यीशु की जीत का संदेश हो सकता है। यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से अब पाप पर, मृत्यु पर और बुराई की सभी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब मैं वापस चलता हूं और आपको एक और पाठ दिखाता हूं। मैंने कहा कि उत्पत्ति अध्याय 6:1-6 कहानी, फिर नूह और जलप्रलय की कहानी से ठीक पहले आपके पास भगवान के इन पुत्रों की यह दिलचस्प कहानी है, जो नीचे आते हैं और बेटियों के साथ घुलते मिलते हैं और उनके साथ संबंध बनाते हैं। पुरुषों के फिर पुराने नियम के बाहर यहूदी साहित्य और यहां तक कि कुछ ईसाई साहित्य में भी अक्सर भगवान के पुत्रों का अनुवाद आध्यात्मिक देवदूत प्राणियों या राक्षसी प्राणियों के रूप में किया जाता है। यह एक हनोक नामक पुस्तक से है, जिसे मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश ने हाल ही में पढ़ा होगा। लेकिन आप गूगल एक एनोच पर जाकर इसका अंग्रेजी अनुवाद भी पा सकते हैं। लेकिन एक हनोक के अध्याय 6 में एक हनोक स्पष्ट रूप से उत्पत्ति 6 बाढ़ का वर्णन कर रहा है। और यहां वह क्या कहता है? उन दिनों में जब मनुष्य की संतान बहुत बढ़ गई, तब ऐसा हुआ कि सुंदर बेटियां उत्पन्न हुई और स्वर्ग के संतान स्वर्गदूतों ने उन्हें देखा और उनकी इच्छा की। तो एक हनोक 6 और एक हनोक में अन्य पाठ हैं जो उत्पत्ति 6 से परमेश्वर के इन पुत्रों को देवदूत प्राणियों के रूप में समझते हैं। एक और अध्याय 21 उसी पुस्तक में एक हनोक, फिर यह आपके पुराने या नए नियम में नहीं है। यह एक ऐसी पुस्तक थी जो पुराने या नए नियम के सिद्धांत में नहीं आती थी। फिर हनोक अभी भी वर्णन कर रहा है, वह बाढ़ का वर्णन कर रहा है, उत्पत्ति 6 की घटना। ये स्वर्ग के सितारों में से हैं जो प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और संख्या के अनुसार 10 मिलियन वर्ष पूरे होने तक इस स्थान पर बंधे हुए हैं। उनके पापों का यह स्थान देवदूतों का कारागार है। तो आपके पास इन स्वर्गदूतों की यह अवधारणा है जो परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, और अब वे उत्पत्ति अध्याय 6 के आधार पर अंतिम न्याय की प्रतीक्षा में जेल में बंद हैं। तो ये स्वर्गदूत जिन्होंने अपराध किया है, वे उत्पत्ति अध्याय 6 से परमेश्वर के पुत्र हैं। 2 पीटर 2 वह किताब जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि यदि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को पाप करने पर न छोड़ा वरन उन्हें नरक में भेज दिया और न्याय के दिन के लिए अंधकार की जंजीरों में डाल दिया। पुनः जब आप 1 पत्रस के अध्याय 2 के पूरे अध्याय को देखते हैं, तो यह उत्पत्ति अध्याय 6 के विवरण में बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। तो फिर स्वर्गदूतों का विचार जो पाप करते हैं, भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और अब वे जंजीरों में जकड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं न्याय का समय। न्यू टेस्टामेंट में एक और पाठ है और कुछ अन्य भी हैं जिनका हम उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल उन्हीं को देख रहा हूं जो सबसे स्पष्ट हैं। जूड अध्याय 6 प्रकाशित वाक्य से पहले की एक छोटी किताब। और जिन स्वर्गदूतों ने अपने अधिकार के पदों को बनाए नहीं रखा बल्कि अपने उचित निवास स्थान को त्याग दिया, उन स्वर्गदूतों को भगवान ने न्याय के लिए अनंत जंजीरों में बांधकर अंधेरे में रखा है। तो मेरा कहना यह है कि आपको यह परंपरा या कहानी उत्पत्ति 6 पर आधारित लगती है कि उत्पत्ति 6 से भगवान के पुत्र देवदूत प्राणी थे जिन्होंने अपनी सीमाओं और आदेशों का उल्लंघन किया और इसलिए पाप किया और इसलिए रूपक रूप से जंजीरों में बंधे हुए थे या अन्यथा जेल में न्याय के दिन की प्रतीक्षा में। अब मुझे लगता है कि पीटर उस कहानी का उपयोग कर रहा है और कह रहा है कि यह निर्णय अंततः यीशु मसीह के रूप में आया है। उत्पत्ति अध्याय 6 के इन स्वर्गदूतों या इन आत्माओं ने अपराध किया और न्याय के लिए जंजीरों में बांध दिए गए, अब वह न्याय हो चुका है। अब यीशु उन देवदूत प्राणियों, उन राक्षसी प्राणियों के पास गए हैं और उन पर न्याय और विजय का संदेश दिया है। अब क्या पीटर सोचता है कि यह सब शाब्दिक है या हो सकता है? मेरे दिमाग में मुझे लगता है कि पीटर सिर्फ एक सामान्य कहानी उधार ले रहा होगा क्योंकि यह लोकप्रिय थी और उसके पाठक इसे समझ गए होंगे क्योंकि यह विचार कई अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के साहित्य। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सिर्फ एक लोकप्रिय कहानी नहीं होती और अब पीटर इसका उपयोग करता है, लेकिन मूल रूप से मुझे लगता है कि यह पीटर का वही बात कहने का तरीका है जो पॉल ने इफिसियों 1 में किया था, जिसे यीशु ने अपने पुनरुत्थान के साथ अब कहा है स्वर्ग में शासकों और अधिकारियों से बहुत ऊपर उठाया गया है और अब वे उसके चरणों की चौकी हैं। यह एक संकेत है कि वह विजयी है और उसने उन पर विजय प्राप्त की है। मुझे लगता है कि यह पीटर का वही बात कहने का तरीका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें यह पूछने की जरूरत है कि पतरस कहा गया या यीशु कहा गया, जेल में ये आत्माएं कहां थीं, क्या ये एकमात्र आत्माएं हैं, अन्य आत्माओं के बारे में क्या। पीटर की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वह बस एक सामान्य कहानी का उपयोग कर रहा है जिससे उसके पाठक परिचित थे, यह दोहराने के लिए कि उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से यीशु ने बुराई की शक्तियों पर जीत हासिल की है और अब अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से एक संदेश की घोषणा करता है फैसले और जीत का ठीक है। इसके बारे में कोई प्रश्न? मैं पाठ को इसी तरह से पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि पृष्ठभूमि को समझने से एक तरह के चिपचिपे मार्ग को साफ करने में मदद मिल सकती है। फिर जब हम समझते हैं कि पतरस इस कहानी में क्या कर रहा है, यह पृष्ठभूमि वह कहानी जिसका वह उल्लेख कर रहा है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यीशु कहां गए और क्या उन्होंने मुक्ति के दूसरे अवसर की घोषणा की, कौन थे ये आत्माएं, कहां थीं? फिर से मुझे लगता है कि यह कहानी दुष्ट देवदूत प्राणियों के लिए एक तरह से आदर्श है जो अब कैद हैं, अपने न्याय के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब पीटर आश्वस्त है कि वह न्याय अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व के माध्यम से आ गया है। अब आपके नोट्स में एक और प्रश्न है और वह यह है कि पीटर यह कहानी क्यों बताता है। मेरा मतलब है, वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? आप देखेंगे कि पतरस आगे बढ़ता है, उसकी शुरुआत यीशु मसीह के पीड़ित होने से होती है जैसा कि हमने किया है, लेकिन पतरस दो अन्य चीजें करता है। नंबर 1 यह है कि पतरस इसे उसी तरह प्रदर्शित करेगा। श्लोक 20 पर ध्यान दें, वह कहता है जिसने पूर्व समय में आज्ञा का पालन नहीं किया जब भगवान ने नूह के दिनों में जहाज के निर्माण के दौरान धैर्यपूर्वक इंतजार किया जिसमें कुछ यानी 8 पानी के माध्यम से लोगों को बचाया गया। दूसरे शब्दों में वह जो कर रहा है वह पीटर द्वारा तुलना स्थापित करना है। जिस तरह नूह और उसका परिवार एक शत्रुतापूर्ण समाज में अल्पसंख्यक थे फिर भी भगवान ने उन्हें बचाया और उन्हें बचाया, उसी तरह उनका चर्च, हालांकि वे रोमन साम्राज्य में इस शत्रुतापूर्ण माहौल में अल्पसंख्यक प्रतीत होते हैं, है उन्हें आश्वासन दिया जा सकता है कि भगवान उन्हें भी बचाएंगे। तो शत्रुतापूर्ण माहौल के बीच नूह और उसके परिवार के एक छोटे से अल्पसंख्यक होने के बीच समानता का यह विषय अब पीटर के पाठकों तक पहुंचता है। वे भी इस प्रतिकूल संदर्भ और प्रतिकूल वातावरण में अल्पसंख्यक प्रतीत होते हैं। फिर भी यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने पहले ही दुष्ट शक्तियों को हरा दिया है, तो उन्हें किस बात का डर है? भले ही पाठकों को उत्पीड़न सहना पड़े, फिर भी पाठकों को किस बात का डर है? यीशु मसीह ने पहले ही दुष्टता की शत्रु शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है। उन्हें वास्तव में जो खतरा है वह रोम में मानवीय स्तर पर शासक और अधिकारी नहीं है, बल्कि जो असली खतरा उसके पीछे आता है वह है स्वर्गीय क्षेत्र के शासक और अधिकारी। जैसा कि पॉल कहते हैं, यही सच्चा खतरा है और मसीह ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से उन्हें पहले ही हरा दिया है। तो उसके पाठकों को किस बात का डर है? इसके बजाय उन्हें पीड़ा के बीच में भी विश्वास के साथ और यीशु मसीह के लिए अपनी गवाही में पूरे दिल से मसीह को गले लगाना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास डरने की कोई बात नहीं है। मसीह ने पहले ही उनकी ओर से कष्ट उठाया है और ऐसा करके उन्होंने न केवल एक आदर्श प्रदान किया है, बल्कि उन्होंने वास्तव में बुराई की शक्तियों को हराया है। इसलिए उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, इसलिए उन्हें गवाही और उचित आचरण में पूरे दिल से मसीह को गले लगाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे नूह और उसके परिवार ने किया था, हालांकि वे भी शत्रुतापूर्ण माहौल में अल्पसंख्यक थे। ठीक है, इस बारे में कोई अन्य प्रश्न? ठीक है, मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक अच्छा ब्रेक ऑफ पॉइंट है। इसके बाद शुक्रवार को हम दो और पुस्तकों को एक साथ देखेंगे, वास्तव में दो पीटर और जूड, जिन्हें हम एक साथ करीब से चलते हुए देखेंगे। यह एक पीटर पर न्यू टेस्टामेंट इतिहास और साहित्य व्याख्यान संख्या 31 में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन थे। यह न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं, एक पीटर पर व्याख्यान 31।